साधना के पथ पर क्यों डगमगाते पाव मेरे, आज रह रहकर कसकते क्यों हृदय के घाव मेरे, आज प्राणों में प्रणय की मधुर सी मनुहार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है, कौन कहता है नहीं यह प्रेम की मेरी कहानी, आज की कल की नहीं यह बात युग युग की पुरानी, आज भी मानव हृदय में एक विफल पुकार क्यों है, आज जीवन भार क्यों है, प्राणों में प्रणय की मधुर सी मनुहार क्यों है। विरह एक ऐसी अवस्था है चेतना की जिसमें सुख भी है और दुख भी है। विरह अर्थात दूरी, विरह अर्थात जिससे प्रेम है उससे दूरी। दो ही अवस्थाएं हैं, एक है विरह, दूसरा है मिलन। विरह का लक्ष्य मिलन है और विरह में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, बड़ा भार है, आश है, इच्छा है मिलन की। और जब तक ऐसी विरह की अग्नि न जले, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए उसके प्रेम का अनुभव भी नहीं होता। तो ईश्वरीय विरह, ईश्वरीय प्रेम का विरह, जब तक ऐसा विरह नहीं तब तक उसकी समीपता का, उसके सामीप्य का अनुभव भी नहीं। और ये विरह द्वापर से अब तक था। किस लिए था? क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसकी खोज थी, उसकी तलाश थी, उसकी प्यास थी, उसकी आश थी, पर वो प्राप्त नहीं हो रहा था और उसकी खोज थी। और अब वो मिल गया। मिलन बहुत अच्छी चीज है, पर मिलन में वो विरह खो गया और पेट ऐसा भर गया कि वो जो तीव्रता थी प्रेम की और मिलन की, वो शायद इस मिलन की वजह से कहीं खो गई। और ये मिलन साधारण सा मिलन हो गया, फिर से वही विरह की अग्नि जाग उठे। पर्शिया की सबसे पहली महिला सूफी संत राबिया, उसको कोई पूछता है कि जब तुम नमाज पढ़ती हो तो खुदा नमाज के पहले तुम्हारे पास आता है या पहले तुम नमाज पढ़ती हो फिर खुदा आता है? कौन कब आता है? पहले खुदा आ जाता है फिर नमाज चालू करती हो, या पहले नमाज पढ़ती हो और फिर खुदा आता है? तो वो कहती है पहले खुदा आता है फिर मैं नमाज पढ़ती हूं। पर कोई उसे पूछता है ये कैसे तुम्हें पता कि खुदा आ गया और फिर अब मुझे नमाज चालू करनी है? इसका क्या प्रमाण है कि खुदा आ चुका है और फिर तुम नमाज चालू करती हो? वो कहती है कि मैं नमाज पढ़ने से पहले ऐसी अवस्था में चली जाती हूं विरह की, और ऐसे अश्रु और ऐसी प्रेम की धारा बहने लगती है कि यह अनुभव हो ही जाता है कि वो आ गया। उसके प्रेम में, उसके प्यार में, उसके मोहब्बत इश्क में ऐसी खो जाती हूं, ऐसी डूब जाती हूं कि ऐसा ही, ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभव होता है कि वो आ चुका है और फिर मैं नमाज चालू करती हूं। यही प्रश्न ब्राह्मणों से भी पूछा जा सकता है। योग करते हो तो योग करने के बाद बाबा आता है या पहले वो आता है फिर योग चालू करते हो? या योग करते करते बीच में वो प्रवेश करता है, कभी जल्दी कभी देर से, और कभी कभी आता ही नहीं? क्यों? कहां ये आंसू सूख गए? भक्ति मार्ग में बहुत आंसू बहाए, ज्ञान मार्ग में आंसू बहाना बंद हो गया। प्रेम के आंसू की बात कर रहे हैं। विरह के जो आंसू होते हैं, प्रेम के जो आंसू होते हैं, वो दुख के आंसू नहीं होते, रोने वाले आंसू नहीं होते। ये आंसू तो बड़े कीमती है और कोई विरला ही इसे बहा सकता है। और इस आंसू के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सहज ही परमात्मा के लिए आंसू आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। विषय विराग ईश्वरीय अनुराग, जब तक विषयों से विराग नहीं, जब तक विषयों की आसक्ति मन में है तब तक ये आंसू नहीं आते। तो जब तक वैष्णव नहीं बन जाते, आज का वरदा स्लोगन है, सारी गंदगी से विराग, तब तक ये आंसू भी नहीं आ सकते। तो ये आंसू बहुत कीमती है। हृदय लगाओ, मिलजुल गाओ, मंगल बेला आई रे, अंगना में गूंजे तोतली बोली, सब मिल गाओ बधाई रे, टकटकी निहारू रे, टकटकी निहारू रे। प्रेमी पुकार रहा है प्रियतम को कि मैं क्या कर रही हूं, बाट देख रही हूं तुम्हारी, कब आओगे कब आओगे कब आओगे। हम भी देख रहे हैं कि आया ही हुआ है, और आया हुआ है इतना सामान्य होकर बैठा है कि वो बैठा है और हम भूल चुके हैं कि वो है भी। इसके लिए भक्ति मार्ग में उसे पुकारा जाता है। तो ज्ञान मार्ग में क्या किया जाए? फिर से पहले भक्ति, फिर ज्ञान, अभी फिर से भक्ति, फिर उसे पुकारना है। बाबा ने कहा है तुम मुझे पुकारो तो हुजूर हाजिर, तुम पुकारते ही नहीं। मैं बैठा हूं, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, हजार भुजाओं वाला बाप बैठा है, फिर भी दो भुजाओं वाले के पास जाते हो, कारण बताओ क्यों, क्यों जाते हो, कारण बताओ, ऐसा पूछा है बाबा ने सीधा एक बार। मैं बैठा हूं सब कुछ तुम्हें देने के लिए, फिर भी दो भुजाओं वाले के पास जाते हो क्यों? तो क्या मैं इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता हूं? क्या मुझे दिल से पुकारोगे तो मैं नहीं देता हूं? जब आत्मा पुकारेगी तो वो देगा, जब जबान पुकारेगी तो वो नहीं देगा। जब दिल से आर्तनाद निकलेगा तब वो देगा, और जब ऊपर ऊपर सतही सुपरफिशियल आर्टिफिशियल कृत्रिम तोता रटन जब ऐसा पुकारोगे तो वो नहीं देगा। वो नहीं दे रहा है अर्थात उसके दोष उसमें नहीं है, खोट इधर है, खोट पुकार में है, मिश्रित है पुकार। टकी निहारू रे, टकटकी निहारू रे, टकटकी निहारू रे, बाट तकू तेरी, रास्ता सवारू रे, राह देखू तेरी। शबरी हर दिन अपनी कुटिया को सजाती है, शबरी हर दिन अपने आंगन को सजाती है, हर दिन वहां पर फूल डालती है। वो जो ऋषि आश्रम है मतंग ऋषि का ऋषि, उसके जो बाकी सन्यासी है उसकी हंसी उड़ाते, तुम किस लिए ये करती हो, कौन राम? वो तब से कर रही है जब राम का जन्म भी नहीं हुआ है, पर उसके गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, तब से इंतजार कर रही है और थकती नहीं है, हारती नहीं है और आशा भी नहीं छोड़ती है। हर दिन नया उत्साह, हर दिन नया उमंग कि आज तो जरूर आएगा। कितना लंबा इंतजार है और एक दिन वो आता है। क्या हमारा इंतजार भी ऐसा ही है कि हृदय में तुम आ जाओ? अब परिचय प्राप्त हो गया, ज्ञान तो मिल गया, पर हृदय में वो है क्या? समाया हुआ है उसकी याद, वो शिला बनी बैठी अहिल्या, कब से, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ है तब से इंतजार कर रही है कि वो आएगा, और आकर क्या करेगा? मुक्त करेगा। आत्मा भी पत्थर बुद्धि बनकर बैठी हुई है अहिल्या, वो आएगा और क्या करेगा? पाव लगाएगा। वो पाव नहीं लगाता, तुलसीदास ने पाव लगाने की बात नहीं की है। तुलसी वाल्मीकि रामायण में पाव लगाने की बात है, तुलसीदास ने तो कहा है चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है केवल, बस उसी से उसका उद्धार होगा। तो क्या हमारा इंतजार, हमारी तीव्रता वैसी है जैसे इन सब की थी, जैसे उस निषादराज की थी, जैसे उस केवट की थी, जैसे उस हनुमान की थी, जैसे उस सीता की थी, जैसे उन अयोध्या निवासियों की थी? शायद नहीं। नैन बिछे फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा, रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। ये प्रेम ऐसा है विरह, इसमें दोनों ही भाव होते हैं, सुख के भी और दुख के, परंतु वो वैसा दुख नहीं होता जैसा संसार का दुख है। डर है परंतु वैसा डर नहीं है जैसे संसार का डर है, ये कोई अलग प्रकार का डर है, ईश्वरीय, कि तू आ, तू जल्दी आ, पुकार रहा है मन उसे। नैन बिछे राह सजी अब आजा द्वारे तू, अब ना कर देरी, ऐसी पुकार। तो आज कौन सा दिन है? बाबा मिलन का दिन, तो उसको ऐसे ही पुकारना है, सारे दिन भर उसका आह्वान करना है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उस परम धाम से आकर हृदय में निवास करो और निरंतर निवास करो और निरंतर वहीं रहो, और फिर नहीं जाना एक बार आने के बाद, वहीं रहो, क्योंकि जहां वो है, जहां ज्ञान सूर्य है, वहां प्रकाश होगा हृदय में, वहां फिर कोई उलझन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। जहां वो है वहां सफलता है, वरदान में है आज, वहां सब कुछ होगा। इसलिए पुकारना, अर हर आहट कान धरू अब आए तब आए, ये प्रेमी की अवस्था है, अब आएगा तब आएगा। हर बार खटखट होती है दरवाजे पर, लगता है वही आ गया। फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए, जो भी आवाजें है ऐसा लगता है उसी की आवाज है, ऐसे लगता है वही पुकार रहा है। फिर भी क्यों सहमा है ये सवेरा, ये सवेरा सहमा है डरा हुआ है फिर भी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन मिचे राह सजी सूरज के संग क्यों है रात अंधेरी, ये फिर भी कौन से बादल है, क्यों ये अंधेरा है, कौन है जो मन को इस मिलन से रोक रहा है। प्रेमी अपने आप से बातें कर रही है, प्रेमिका अपने आप से बातें कर रही है कि तुझ से और मुझ में ये जो मिलन होना चाहिए इसमें कुछ तो बाधा है। सूरज आ रहा है पर परंतु ये अंधेरा क्यों है, ये रात क्यों है, समझ नहीं आ रही है। शायद जरूर किसी श्रीमत का उल्लंघन किया है इसलिए ये रात है, जरूर कोई ना कोई अपवित्रता है इसलिए ये रात है, इसलिए वो मिलन वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। चंदा में छब तेरी मुझको दिख जाए, तेरा ही संदेश एक हवा भी लाए, सब कुछ धुला धुला है, आसमां खुला खुला है, फिर भी क्यों एक बादल डाले है घेरा। कौन सा बादल है? वो ढूंढना है, वो मिलन नहीं होने दे रहा है, कोई तो एक बादल है जो बीच में आ गया है, बाकी सब ठीक है। आसमां खुला खुला, सब कुछ धुला धुला, तेरा ही संदेश हवा दाए, चंदा में तुझको देखती हूं तेरी छवि सब जगह दिखाई देती है, परंतु फिर भी कुछ तो है जो गड़बड़ कर रहा है, जो मिलन हो नहीं दे रहा है। दिनचर्या में ऐसी कुछ कर रहे बातें कि शाम का भगवान से मिलन वैसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए, या जीवन में ऐसी कुछ बातें चल रही है जिससे प्रभु मिलन नहीं हो पाता। जरूर सूक्ष्म अपवित्रता है, जरूर ब्रह्मचर्य खंडन हो रहा है। जितनी प्यूरिटी की स्टेज ज्यादा होगी उतना ही ये मिलन होगा। सीधा संबंध प्यूरिटी से है। जिनकी प्यूरिटी भंग हो रही है वो कभी भी परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। कौन सा बादल है ढूंढना है? सोशल मीडिया का बादल है या इंटरनेट का बादल है? कौन सा बादल है? या व्यर्थ का बादल है? व्यर्थ सुनने का, व्यर्थ देखने का, व्यर्थ में हिस्सा लेने का, व्यर्थ में भागीदार बनने का, व्यर्थ संग का, किसका बादल है? व्यर्थ चिंतन का, बाहर की चीजों का। उस दिन कहा था, सोते सोते नॉवेल पढ़ते पढ़ते सोते हैं उनकी क्या गति होगी? क्या पढ़ते पढ़ते सो रहे, क्या देखते देखते सो रहे, कौन सी बातें चल रही है सोने से पहले? फिर कहां से होगा मिलन? नैन बिछे राह सजे, हो तुझसे जुड़ी अब सब सांसें भी मेरी, सारी सांसें उससे जुड़ जाए, कंबाइंड संयुक्त एक उसके साथ। जब ऐसी चेतना की स्थिति होगी तब प्रभु मिलन का अनुभव होगा। तो विरह, विरह की अग्नि कहा जाता है, विरह की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो, जैसी गोपियों की अवस्था थी। वो उद्धव आता है उधर से, कृष्ण कहता है जा उद्धव गोपियों को समझाओ कि मैं कौन हूं। वो जिसे जिसको कृष्ण समझ रही है वो खाली कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा है, जाओ उनको समझाओ। वो उद्धव जाता है, यमुना पार करता है, उसको गर्मी होने लगती है क्योंकि उद्धव के पास ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके पास सारा ज्ञान है, पर यहां तो प्रेम की अग्नि थी। गोपिया, वो गोपियों को समझाने लगता है, अरे ये क्या कर रही हो? कोई गोपी कृष्ण जैसी बांसुरी बजा रही है, कोई गोपी कृष्ण जैसी खेल रही है, कोई कृष्ण बना है, कोई गोपी बनी है। ये सब देख के उसे बड़ी दया आती है, अरे रे रे रे, ये क्या कर रही है? कहां तो ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि, सर्व खलविदम ब्रह्म, माया, सर्व संसार माया है, और ये कहां फंसी हुई है? वो उनको समझाने लगता है, समझाने लगता है, समझाने लगता है, ज्ञान देने लगता है, पर वो प्रेम में डूबी हुई है। वो उनको जो बताता है वो कहती है कृष्ण यहां खड़ा था, कृष्ण यहां खड़ा था, हम उसके साथ यहां खेलती थी, ये करती थी, वो करती थी। वो उनको समझाते समझाते थक जाता है, 6 मास के बाद नतमस्तक होके वापस आता है कि तुम जो कर रही हो चलने दो, यही राइट है। क्योंकि वो प्रेम अग्नि में जल रही थी, विरह में जल रही थी, और विरह के ऊपर और कोई स्थिति नहीं है। बिछो इसको कहते हैं, पैंग्स ऑफ सेपरेशन कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे पैंग्स ऑफ सेपरेशन इतिहास में ईस्टर्न वेस्टर्न पूरब पश्चिम में जितने प्रभु प्रेमी हुए हैं सभी ने अनुभव किया है। फरीद से लेकर तो कबीर से लेकर तो राबिया से लेकर तो सेंट फ्रांसिस, सेंट एसीसी, सेंट जेवियर, सेंट जॉन, सेंट एविला से लेकर तुलसीदास, सूरदास, तुकाराम, नामदेव, मीरा, कबीर लिखता है सुखिया सब संसार खावे और सोए। कबीर लिखता है सुखिया सब संसार खाता है और सोता है, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। क्योंकि आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि प्रीतम दूर है, कब आएगा वो, कब आएगा वो, कब आएगा वो। ऐसी मिलन की तड़प, हरिनीचे पाड़स व्याघ्र धरी ने ले, मजला ही जाहले ऐसे देवा, नको देवराया अंता तपाहु, प्राणा सर्वथा जाहु पाहे। जैसे प्राण निकल जाएगा अब तू नहीं मिला तो विरह, विरह की 10 दशाओं का वर्णन है। एक आत्मा जो भगवान से दूर है और जो मिलन मनाना चाहती है और जो उससे मिलना चाहती है, उसके प्यार में तड़प रही है, संसारिक व्यक्ति के प्यार में नहीं, ईश्वरीय विरह। ईश्वरीय विरह की 10 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली अवस्था है चिंता। चिंता अर्थात जिससे प्रेम है उसकी इतनी ज्यादा चिंता है कि चिंता से भी ज्यादा अच्छा अक्षर है ख्याल, कंसर्न। जैसे गोपियों का दिखाया हुआ है, गोपियों को चिंता है कि कृष्ण अभी जा रहा है वन में, उसके पैरों को कहीं काटा ना चुभ जाए, उसको कुछ हो ना जाए, ऐसी चिंता। मतलब दिन रात केवल उसी का ख्याल होता है। तो विरह अर्थात जिससे दूर है उसका ख्याल, उसकी चिंता, ओना फूरना, बस उसी का चिंतन चालू है। यह विरह की पहली दशा है। ये सारी दशाएं होनी चाहिए तो कहेंगे कि भगवान से प्यार है। अगर चिंता ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं, उसका कंसर्न ही नहीं, तो कैसे समझा जाएगा कि उसका प्यार है? एक भौतिकवादी होते हैं, चिंतित होते हैं। जैसे व्यक्ति अध्यात्मक में आ जाता है, चिंता से मुक्त हो जाता है, परंतु जैसे आगे बढ़ता है फिर से चिंताग्रस्त हो जाता है। पर ये जो चिंता है और वो संसार की जो चिंता है, इसमें अंतर है। वो लौकिक चिंता है, ये चिंता अब संपन्न बनने की है, ये चिंता अब उससे मिलन बनाने की है, ये चिंता है कि वो दूर क्यों है, वो आता क्यों नहीं, उसकी याद निरंतर क्यों नहीं है, ये चिंता। ये सबसे पहली अवस्था है। दूसरा है जागरण। जो प्रभु प्रेमी होता है उसको रात में कभी नींद नहीं आती, 2 बजे के बाद तो आ ही नहीं सकती, अगर आती है 2 बजे के बाद तो परमात्मा प्रेम की कमी है, सो कैसे सकते हैं जब इतने सारे कार्य करने बाकी है, सारे विश्व को सकाश देनी बाकी है, सारा आश्चर्यपन का अनुभव करना बाकी है। जागरण, जागरण अर्थात वो सोता ही नहीं है, उसको नींद नहीं आती है, और जितनी सात्विकता बढ़ती जाती है नींद कम कम होती जाती है। सुखिया सब संसार, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर, जागे और रोए। रोता है वो। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है, कैसे मैं सोऊं, वो कभी भी आ जाए तो द्वार पर आ जाए, ईसा मसीह आ जाएगा किसी रात को, और मैं सोया हुआ दिखूंगा उसको, तो मैं क्यों सोऊं? वो उसकी राह तकते रहता है, देखते रहता है, अब आए, टक टकी निहारू। विरह की दूसरी अवस्था है जागरण, जागता है उसमें व्यक्ति। और ऐसा नहीं कि मैं जागू, वो नहीं, स्वतः होता है, ये रिजल्ट है जागरण, पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम है जागरण, प्रेम का परिणाम। प्रेम इतना ज्यादा है कि जागरण स्वतः हो रहा है। उसके बाद बड़ा ही अच्छा एक शब्द है हिंदी में, उद्वेग। तीसरी दशा है विरह की उद्वेग। उद्वेग अर्थात हलचल, मन में हलचल है, मन में दर्द है, टीस है, पीड़ा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, चिंता है एक, वो चिंता अलग, चिंता के भी आगे का स्वरूप है उद्वेग, उद्वलित चित्त, हलचल से भरा हुआ चित्त। परंतु ये संसारिक हलचल नहीं है, लौकिक हलचल नहीं है, भौतिकता वाली हलचल नहीं है, संसार की वस्तुओं के लिए हलचल नहीं है, ये हलचल ईश्वरीय हलचल है, उद्वेग है। यहां पर ये विरह की अवस्था है, हां अपहीवल कह सकते हैं, उद्वेग, उद्वलित चित्त, ऐसी अवस्था। उसके बाद में है संस्कृत शब्द है या हिंदी शब्द कृशता, कृश अर्थात सूख जाना। जैसे राम जी जब आते हैं लौट कर वन से और देखते हैं भरत को, एकदम पतला दुबला सा हो गया है, कृश, कृश अर्थात पतला दुबला, कृशता अर्थात जैसे कि क्या कहेंगे उसको, शरीर के भान का से परे है, शरीर का भान नहीं है वहां पर, आध्यात्मिक भाषा में कृशता, बाकी हिंदी भाषा में कृशता अर्थात पतला दुबला सा, आध्यात्मिक भाषा में कृशता अर्थात जहां देह भान नहीं है, ऐसी अवस्था होती है। उसके बाद में पांचवा, एक मनोनग्नता ऐसा एक शब्द है, बड़ा ही कठिन सा शब्द है, हमने भी कभी नहीं सुना था, पहली बार सुना, जिसका अर्थ यह होता है कि श्रृंगार से वैराग, साज श्रृंगार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साज श्रृंगार में मलिनांगता अर्थात शरीर को सजाना है, शरीर का श्रृंगार करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारा ध्यान उसके तरफ है, भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा की अवस्था, चैतन्य महाप्रभु की अवस्था, जिनको इस संसार की चीजों से वैराग है, ऐसी अवस्था मलिनांगता अर्थात साज सज्जा श्रृंगार इनसे उपराम, ये विरह की अवस्था है। उसके बाद में प्रलाप, प्रलाप अर्थात आवाज, पुकार, प्रलाप कर रही है आत्मा, पुकार रही है, बार बार पुकार रही है कि कब आओगे, अब आओ तब आओ, क्या कहा गीत में, हर आहट कान धरू, अब आए तब आए, फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए, जानती हूँ आएगा तू, खुशियां बरसाएगा तू, फिर क्यों सहमा है ये सवेरा, ये अवस्था प्रलाप करना। वैसे प्रलाप दुख की अवस्था है, प्रलाप क्या व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो ऐसा कहते हैं, या तड़प, प्रलाप यहां पर अर्थात तड़प, प्रलाप अर्थात उससे बात, उसके लिए पुकार, ऐसी पुकार, क्या ऐसा हृदय में हमारे प्रेम है बाबा के लिए, भक्तों में तो बहुत था, और जब हमने भक्ति की थी तब था, अब कहां चला गया, कहां गुम हो गया, शायद खो गया कहीं ना कहीं, पहली बार मधुबन आए थे तो कैसा प्यार था, आंसू रुकते नहीं थे, वहां से ही आबू रोड से आंसू चालू हो जाते थे ट्रेन में बैठे बैठे, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन, ये हमारा है, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से न्यारा है, ऐसे ऐसे गीत आत्माएं गाती है, आबू 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 प्रलाप, आवाज देना, पुकारना, तड़पना उसके प्यार में। उसके बाद में व्याधि, अगला है व्याधि, प्रेम का रोग जहां लग जाता है, व्याधि की तरह है, ठीक ही नहीं होता है, कोई वैद्य इसको ठीक नहीं कर सकता, केवल वही यामि गुरुम भव भय वैद्यम, वो जब तक भव भय वैद्यम नहीं आ जाता तब तक ये ठीक नहीं होता, ऐसा रोग का रूप ले लेता है ये प्रेम, फिर उसमें कोई लोक लाज की चिंता नहीं, सासू कहे घर फोड़ी रहे, मीरा कहे सारे लोक लाज को छोड़ देती है, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रहे, घर को फोड़ने वाली है ये, लोग कहते पागल हो गई है, वो अवस्था तो उसको कहते हैं व्याधि का रूप धारण करती है वो विरह, ऐसा ईश्वरीय प्रेम हो, ये ईश्वरीय प्रेम बड़ी दुर्लभ चीज है, जहां संसार की चीजें, संसार की इच्छाएं, भौतिकता समाई हुई है, वहां ये शुद्ध अवस्था आ ही नहीं सकती कभी, इस अवस्थाओं में परम वैराग चाहिए, छी छी दुनिया, यहां का कुछ नहीं है हमारे काम का, सभी चीजों से विरक्त जहां हो जाती है आत्मा, तब ऐसी व्याधि आती है, उसके सिवा ऐसी व्याधि आ ही नहीं सकती, ऐसा विरह हो ही नहीं सकता। और जब तक ऐसा विरह नहीं, वो मिलन भी ठीक नहीं हो सकता। हजारों लोग बाबा से, कितने, पूरा हॉल भर जाता है मिलने आते हैं, क्या सबको अनुभव हो रहा है? आधा ध्यान किसी और बातों पर है। बाबा से मिलन मनाने आ रहे हैं, परंतु आधा टाइम तो शांतिवन के बाहर घूमने में, शॉपिंग में लगे हुए हैं, कुछ कुछ बातें करने में लगे, किस किस से मिलने में लगे हुए। केवल इस भाव से आना कि हम मिलन मनाने आए हैं और तपस्या करने आए हैं, तभी मिलन होगा। प्रभु मिलन इतना सस्ता भी नहीं है कि आ जाओ और हो जाए, बैठ जाओ डायमंड हॉल में और हो जाए। व्याधि, उसके बाद है उन्माद। विरह की आठवीं दशा है उन्माद। उन्माद अर्थात नशा, उन्माद अर्थात इंटॉक्सिकेशन, उन्माद अर्थात पागलपन, व्याधि से आगे की अवस्था। अब तो बेड पर पड़े थे, अभी पागल जैसे विक्षिप्त विक्षिप्त हो गए, इंसेनिटी। जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं, किसी का पति खो जाए और वो आ जाए तो गलियों से बावरे के जैसे, बावरी के जैसे निकलती है। और तुम्हारा बाप आया है, पतियों का पति आया है, तो तुमको भी क्या करना चाहिए निखिलेश भाई? बावरी के जैसा निकल के भागना चाहिए। ऐसी विक्षिप्तता, ऐसा पागलपन, ऐसा ईश्वरीय पागलपन, डिवाइन मैडनेस, द लव, The wine of divine madness, ऐसा पागलपन, ऐसी प्याली पी लेनी है। प्यार पीना उसको नहीं कहते कि पीने के बाद होश है, पीना अर्थात इतना पीना कि लड़खड़ाने लगे और गिर जाए कहीं, इसको कहेंगे कि हाँ अभी ठीक है। ये कैसा पी रहे कि जिससे नशा ही नहीं चढ़ता, ऐसा नशा चढ़ जाए। रूहानी पियक्कड़ भव, तो पी लेना अर्थात शुद्ध बुद्ध सब बिसरी, तुम मेरी लाखो राजहरी। सारी शुद्ध बुद्ध जिसमें बिसर जाए, खो जाए, भूल जाए, देह का भान ही भूल जाए। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु की तीन अवस्थाएं दिखाते, एक अवस्था में पूरा जागृत है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गलियों में घूम रहा है, ढोल बजा रहा है, गा रहा है। दूसरी अवस्था है, उसमें वो गा नहीं रहा है, उसमें विरह है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, यहां गिरता है वहां गिरता है, वहां दिखता है वहां दिखता है, आग है जैसे अंदर विरह की। और तीसरी अवस्था है जहां कुछ भी नहीं कर रहा है, चुप है, खोया है समाधि में, जैसे उसके साथ एक हो गया है, कुछ नहीं बोलता है, मौन है, परम मौन। तो विरह की अवस्था है अगली उन्माद, उन्माद, ईश्वरीय उन्माद, वो विक्षिप्तता। जैसे संसार की वस्तुओं के लिए पागल होते हो, जैसे स्त्रियों के पीछे पुरुष पागल होते हैं, जैसे धन के पीछे व्यक्ति पागल होता है, जैसे पुत्र मोह में व्यक्ति अंधा पागल हो जाता है, वैसा पागलपन, वैसी विक्षिप्तता, वैसी डिवाइन मैडनेस ईश्वरीय प्रेम के प्रति हो। उसके बाद में मोह, नौवीं अवस्था है विरह की। मोह, इतना अधिक मोह हो जाए, बाबा कहते हैं शुद्ध मोह, इतना उसमें मोह हो जाए, इतना उसमें मोह हो जाए कि एक पल के लिए भी आंखों से अलग ना हो, बस निरंतर उसी को देखता रहूं, उसी के साथ रहूं, इतना मोह उसके प्रति। ये विरह की नौवीं अवस्था है। और लास्ट मृत्यु, मृत्यु अर्थात मर जाना नहीं, विरह की अवस्था चालू है, विरह में व्यक्ति जिंदा है, मृत्यु अर्थात संसार की मृत्यु। जीते जी मरना, मर जीवा जन्म, डाइंग अलाइव, ये अवस्था आ जाना विरह की। ऐसी दस अवस्थाएं, दस दिशाएं, दस दशाएं, और सभी दशाओं का अनुभव करना, अर्थात ये ऐसा विरह होगा तब प्रभु मिलन होगा। तो सबसे पहला बताया चिंता, उसका ख्याल, उसकी बातें, उसने क्या कहा, उसने ये कहा और मैंने किया नहीं, वो ये कहता है और मैंने अब तक नहीं किया, इसकी चिंता। वो ऐसा ऐसा कहता है फिर भी मैं नहीं करता हूं, क्या करूं? रेस्टलेसनेस होना चाहिए, बेचैनी हो जानी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए कि वो इतना कुछ कहता है मैं क्यों नहीं कर पा रहा, कौन से वो बादल है। क्या सुना? फिर भी क्यों एक बादल डाले है घेरा, रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, आसमां खुला खुला है, सब कुछ धुला धुला है, तेरा ही संदेशा एक हवा भी लाए, चंदा में छप तेरी तुझको दिख जाए, सब कुछ जगह तू दिखता है पर कोई तो एक काला बादल है जो बीच में आ जाता है। तो पहली अवस्था चेतना की पहली दशा है चिंता ख्याल, दूसरा बताया जागरण। जागरण परिणाम होगा परंतु शुरुआत की अवस्था में अभ्यास करना पड़ेगा ताकि जल्दी जाग जाओ। सुबह सुबह प्रभात के समय प्रातः स्मरामी, क्योंकि उसी समय उससे जो मिलन होता है वो दिन भर नहीं हो सकता, वो 3:30 बजे के बाद नहीं हो सकता, वो उसके पहले ही होगा जो होना है। जितना देरी से उतना ढीला मिलन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाती है वहां पर, इसके लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और समय बहुत कम है और विकर्म बहुत ज्यादा है और पाप बहुत सारे हैं, परते बहुत है आत्मा के ऊपर, कैसे पवित्र होगी, कैसे शुद्ध होगी, तप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी तपस्या अमृत वेला है। अगला उद्वेग, हलचल, स्पिरिचुअल हलचल, स्पिरिचुअल अपहीवल की अवस्था। उसके बाद में कृशता, कृशता अर्थात इसमें खान पान की आसक्ति कम हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है भोजन विजन में। जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती जाती है कम से कम भोजन में शरीर चलता है, भोजन का कोई ख्याल नहीं रहता, अब ये खाऊं वो खाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं, क्या बन रहा है उधर, यहां क्या बना, वहां क्या बना, ब्रह्मा भोजन कहां है, इधर जाऊं उधर जाऊं, तुम्हारी थाली में ये सब्जी कहां से लाई, एक्स्ट्रा है क्या, ये तो जनरल में थी नहीं, कहां से मिली, संपूर्ण विरक्ति भोजन से। खा इसलिए रहे क्योंकि शरीर को ठीक रखना है, चलाना है, संगम युग है, इसी शरीर में भगवान मिला है, मानुष तन दुर्लभ है, इसलिए बुद्धि उसमें नहीं। और जितनी जितनी सात्विकता बढ़ेगी भोजन में रस कम हो जाएगा, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये प्रेमिका की अवस्था है, ईश्वर परम प्रेमी है, हम प्रेमिका है। उसके बाद में मलि नंगता, उसका अर्थ क्या बताया? श्रृंगार, अच्छा अच्छा पहनना, सजाना, पाउडर, टैटू, मेहंदी, लिपस्टिक, सेंट, परफ्यूम, डेकोरेशन, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, चप्पल, नेल पॉलिश, काजल, ये सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे ऊपर। उसके बाद में प्रलाप, संसार व्यर्थ प्रलाप करता है, ये ईश्वरीय प्रलाप है। पुकार, संवाद। उसके बाद में व्याधि, व्याधि का रूप धारण कर लिए, ऐसी व्याधि कि जो ठीक ही ना हो, कोई वैद्य उसको ठीक ना कर पाए। द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, सेंट फ्रांसिस ने लिखा है, आई एम स्ट्रक विथ द डिवाइन एरो, ईश्वरीय प्रेम का तीर ऐसा चुभा है कि खून बहा जा रहा है और कोई भी ठीक नहीं कर पाता इसको, क्या करूं, व्याधि। उसके बाद में उन्माद, नशा, इंटॉक्सिकेशन, विक्षिप्तता। उसके बाद में मोह, इतना अधिक मोह बढ़ गया, इतना अधिक मोह कि एक पल भी उससे दूर नहीं जाने की इच्छा है, ऐसा ईश्वर के प्रति। फिर संसार से कितनी विरक्ति चाहिए, यहां पर यहां की कोई चीज हमें आकर्षित ना करे, सब व्यर्थ दिखाई दे, सब मरे पड़े हैं, सब मुर्दा है, सब लाशें हैं, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, रिंचक मात्र संसार में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट केवल आध्यात्मिक पुरुषार्थ में है और अपनी सेवाओं में है और डिटैचमेंट है उसमें, बस यही बुद्धि में गूंज है। अगला, मृत्यु, मौत, फना हो जाना। तो ये ऐसी दस विरह की दशाएं है। तो सभी फिर से स्थिर बैठेंगे और स्वयं को ईश्वरीय प्रेम में इतना डुबो देंगे और उसी में आह्वान करेंगे कि शाम को बाबा जब तुम आओ तो ऐसा वरदान दे दो कि तेरा प्यार हृदय से कभी बाहर जाए ही ना। ओम शांति।
Yeah.